नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की 170 थाना प्रभारियों को हटाया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज असम और पुदुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल के वितरण को अनुमति दी। 94,000 टन LPG के साथ दो और भारतीय टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया और भारतीय मुक्केबाज आज मंगोलिया के उलान बटोर में एशियाई चैंपियनशिप में अपना अभियान शुरू करेंगे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु में इस बार 5 तरफा मुकाबला होगा। राज्य में 1,18,00,000 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले चुनाव में राज्य में 70-75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के माध्यम से मतदाताओं से अपना मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उधर पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 6 अप्रैल तक अपने नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। इस चरण में 23 अप्रैल को 152 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। इस चरण के लिए अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। चेन्नई से जॉय और कोलकाता से संदीपान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 170 पुलिस थाना प्रभारियों को हटा दिया है। इनमें भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने 11 उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित कुल 184 पुलिस अधिकारियों के तबादलों और तैनाती को मंजूरी दी। ये फेरबदल पूरे राज्य में किया गया है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत असम और पुदुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में असम की प्रगति सबके सामने है और राज्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के कारण लोग डबल इंजन वाली NDA सरकार के अगले 5 वर्ष के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की NDA सरकार ने पिछले 5 वर्ष में पुदुचेरी के लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं। केरलम में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होंगे। विशेष श्रृंखला की आज की कड़ी में हम तिरुवनंतपुरम जिले की वट्टेरुकावु विधानसभा सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की वट्टेरुकावु विधानसभा सीट पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। मौजूदा विधायक और CPM नेता VK प्रशांत सत्ताधारी LDF के उम्मीदवार हैं। BJP नेता और तिरुवनंतपुरम नगर निगम की मौजूदा पार्षद R श्रीलेखा NDA की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के मुरलीधरन वट्टेरुकावु से UDF के उम्मीदवार हैं। राजधानी की इस सीट पर BSP के M मुरली, SUCI कम्युनिस्ट के BSML और 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में VK प्रशांत ने BJP के VV राजेश को हराया था, जबकि कांग्रेस की वीना S नायर तीसरे स्थान पर रही थी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी M पल्लू की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
लोकसभा में आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य कंपनियों और व्यक्तियों के बीच प्रक्रियात्मक विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में समूह ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों को विनियमित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले केरोसीन तेल के वितरण की अनुमति दे दी है। विश्व भर में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य सामान्य स्थिति में केरोसीन का उपयोग बंद होने वाले क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना है। एक रिपोर्ट।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि इस अधिसूचना के अनुसार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित ईंधन स्टेशनों को घरेलू उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले केरोसीन तेल का भंडारण और वितरण करने की अनुमति दी गई है, जहां सामान्य परिस्थितियों में केरोसीन का उपयोग बंद कर दिया गया था। इससे उन क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। मंत्रालय ने बताया कि प्रति जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के स्वामित्व वाले अधिकतम 2 ईंधन स्टेशन 5,000 लीटर तक केरोसीन का कर सकते हैं। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अमन यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दो और भारतीय एलपीजी टैंकर 94,000 टन एलपीजी के साथ स्वदेश आ रहे हैं। दोनों टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। एक एलपीजी टैंकर BWTYR कल मुंबई पहुंच सकता है, वहीं दूसरे टैंकर BWELM के 1 अप्रैल को न्यू मंगलोर पहुंचने की संभावना है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। इससे पहले भारत के 4 एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से जल डमरू मध्य से गुजर चुके हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कलिबाफ ने अमरीका पर गुप्त रूप से जमीनी सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी सैनिक ईरान में प्रवेश करते हैं तो ईरानी सेना जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए कहा कि संघर्ष अब अत्यधिक संवेदनशील स्थिति में पहुंच गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के अनुसार 3,500 मरीन और नौ सैनिकों के साथ अमरीकी युद्धपोत USS त्रिपोली पश्चिम एशिया पहुंच गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने ईरानी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाकर किए गए अमरीकी इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान तेज हो गए हैं। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में अपने बफर जोन का विस्तार किया है और नए हमले किए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसका उद्देश्य हिजबुल्ला की घुसपैठ रोकना और इजरायल की उत्तरी सीमा को सुरक्षा मजबूत करना है। लेबनान के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में हुए हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इजरायली सेना ने हाल में माउंट हरमोन से जुड़ा एक दुर्लभ ऑपरेशन किया। इसमें सीरिया की तरफ से दक्षिणी लिबनान में सीमा पार गतिविधि की गई। इजरायली सेना ने कहा इसका मकसद पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्र में हिजबुल्लाह को रोकना और उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाना है। माउंट हरमोन एक रणनीतिक रूप से ऊंची जगह है, जहां लिबनान, सीरिया और इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स की सीमाएं मिलती हैं। इससे यह निगरानी और सैन्य दृष्टि से एक बेहद अहम जगह बन जाती है। यह बताया गया है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत और बेका घाटी के ऊपर ध्वनि अवरोध को तोड़ा, जबकि दक्षिणी सीमा पर हिजबुल्लाह लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच झड़पें जारी रही हैं। लिबनानी अधिकारियों ने कहा कि बाद में हमलों में बचाव दल, पत्रकार और आपातकालीन सेवा कर्मी लगातार गोलीबारी की चपेट में आ रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा इसराइल पर किए गए पहले हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतें आज 115 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। इस हमले से पश्चिम एशिया में ईरान के साथ अमरीका इसराइल संघर्ष और बढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमत 2.7% बढ़कर 115.66 डॉलर हो गई है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज से मंगोलिया के उलान बटोर में शुरू हो रही है। भारत की निकहत जरीन, लवलीना बुरगोहाई, जैस्मीन लेम्बोरिया, अंकुशिता बोरो, अरुंधति चौधरी और अल्फिया फताहन को बाई मिलने के कारण अगले राउंड में प्रवेश मिल गया है। इसके अलावा प्रीति पवार और मीनाक्षी हुड्डा भी भारतीय दल का हिस्सा हैं। विश्वनाथ सुरेश, जदुमणि सिंह, सचिन आदित्य प्रताप सिंह, दीपक अंकुश और नरेंद्र पुरुष वर्ग में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के साथ जनगणना 2027 डिजिटल उपकरणों और स्वगणना के साथ पहली जनगणना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस दौरान श्रोता हमारे नंबर 011 0481-011-2371-7117 और 011-2331-4444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
धन्यवाद मुकेश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में अमेरिका और यूरोप में प्रदर्शन की खबर प्रमुखता से देते हुए हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप के विरोध में उमड़ा जनसैलाब, ईरान युद्ध और अन्य फैसलों की निंदा। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, खाड़ी में पहुंचे 3,500 अमरीकी सैनिक, युद्धपोत त्रिपोली सैनिकों को लेकर आया, दोनों ओर से हमले रहे जारी। जनसत्ता के अनुसार पश्चिम एशिया युद्ध में जमीनी हमले के लिए अमरीकी सैनिक तैयार, ईरान ने कहा इंतजार। पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युद्ध से हालात चुनौतीपूर्ण, संकट के राजनीतिकरण से बचें। देशबंधु के अनुसार मन की बात में मोदी बोले, ऊर्जा संकट में एकजुटता दिखाएं। इसी खबर पर अमर उजाला ने गहराता संकट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच हौसी विद्रोहियों के दखल से इस संघर्ष में नया मोर्चा खुल गया है। वहीं वैश्विक बाजारों में पहले से ही चल रही उथल पुथल के और ज्यादा बढ़ने से ईंधन की कीमतों में और अधिक बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। राजस्थान पत्रिका ने युद्ध के घाव शीर्षक से लिखा है, 10.68 अरब डॉलर के कृषि डेयरी निर्यात पर संकट, कंटेनर अटके, निर्यातक परेशान, सरकार ने किए उपाय और राहत की उम्मीद। पंजाब केसरी के अनुसार 94,000 टन एलपीजी के साथ भारत के दो और जहाज हॉर्मुज से सुरक्षित निकले, कुछ दिन में भारतीय तटों पर पहुंचने की संभावना। हिंदुस्तान ने पड़ोसी धर्म का निभा शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पड़ोसी देशों की नई दिल्ली से ईंधन की मांग दरअसल भारत पर उनके भरोसे को दर्शाती है और उचित ही भारत सरकार ने उन्हें निराश नहीं किया। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, बुजुर्ग माता पिता को बेसहारा छोड़ा तो वेतन में होगी 15% की कटौती।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की 170 थाना प्रभारियों को हटाया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज असम और पुद्दुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल के वितरण की अनुमति दी। और भारतीय मुक्केबाज आज मंगोलिया के उलानबाटोर में एशियाई चैंपियनशिप में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।